ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सांसद ओम बिरला ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विपक्ष ने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू श्री बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले जब आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया। श्री ओम बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद करते हुए कहा कि संसदीय मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करना उनकी प्राथमिकताएं होंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है और सदन अगले 5 वर्षों में उनके मार्गदर्शन में काम करेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्षता अध्यक्ष की एक प्रमुख विशेषता है और उन्हें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी सदस्यों को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की लोकसभा में निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि वो कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है जब देश में तानाशाही थोप दी गई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया था। इस दौरान सदन में कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी की। इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कुछ देर मौन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें प्रसन्नता हुई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आपातकाल की कड़ी निंदा की और उस दौरान हुई ज्यादतियों को उजागर किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन इसके बारे में आज के युवाओं को जानना आवश्यक है। आपातकाल एक ऐसा उदाहरण है जब संविधान को कुचलकर जनता की राय को दबा दिया गया था, इस दौरान संस्थानों को नष्ट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ कुलपति तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ कुलपति काफी लंबे समय से श्रद्धापूर्वक बाबा विश्वनाथ की भक्ति में लगे रहे और आज उन्हीं के श्री चरणों में विलीन हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र पिछले सोमवार को आरंभ हुआ, जबकि राज्यसभा का सत्र कल से शुरू होगा। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए निर्दिष्ट आवृत्ति की रेडियो तरंग आवश्यकताओं और मोबाइल सेवा लाइसेंस के नवीकरण के लिए आज 7 दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी संपन्न हो गई। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2024 की तरंग आवंटन नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी, मजबूत और उन्नतशील रही। उन्होंने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने सेवा निरंतरता और इसे विस्तारित करने के लिए स्पेक्ट्रम लिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश में दूरसंचार सेवा की स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए संचार मंत्रालय स्पेक्ट्रम उपलब्ध करने की प्रक्रिया जारी रखेगा। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने उन्हें धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में एजेंसी की पूछताछ के बाद सीबीआई को श्री केजरीवाल को विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम नीट पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल गई। उसने पेपर लीक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर स्कूल के प्रधानाचार्य एहसान उल हक से पूछताछ की। उन्होंने सीबीआई को बताया कि लीक हुए प्रश्नपत्र को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।